ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद अध्याय एक श्लोक संख्या तीन। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। आपने ब्रह्म ज्ञान में परम शक्तिशाली एवं जीवात्माओं के जनक के रूप में नियुक्त प्रजापति ऋषि को उनकी पत्नी आकृति के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई है। कृपया धैर्य। आपने ब्रह्म ज्ञान में परम शक्तिशाली एवं जीवात्माओं के जनक के रूप में नियुक्त प्रजापति ऋषि को उनकी पत्नी आकृति के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई है। तत्पर्य। ब्रह्म वर्चस्वी शब्द अत्यंत सार्थक है। ऋषि ब्राह्मण थे और वे समझक पूर्वक ब्रह्म कार्य का पालन करते थे। जैसा कि भागवत गीता में उल्लेख है, ब्रह्म गुण इस प्रकार है, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, अंत तथा बाह्य स्वच्छता, आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान की उन्नति, सादगी, सत्यता, श्री भगवान में श्रद्धा इत्यादि। ऐसे अनेक गुण हैं जिनसे ब्रह्मवादी व्यक्तित्व प्रकट होता है और ऐसा माना जाता है कि ऋषि ब्रह्मवादी सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करने वाले थे, इसलिए उन्हें विशेष रूप से ब्रह्म वर्चस्वी कहा गया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण जैसा आचरण न करने वाले को वैदिक भाषा में ब्रह्म बंधु कहा जाता है और उसकी गणना शूद्र तथा स्त्रियों की कोटि में की जाती है। इस प्रकार हम भागवत में यह देखते हैं कि वेदव्यास ने महाभारत की रचना विशेष रूप से स्त्री शूद्र ब्रह्मबंधु के लिए की थी। स्त्री शूद्र तथा ब्रह्मबंधु वे तीनों वर्ग अल्पज्ञ कहलाते हैं। वे वेदों का अध्ययन नहीं कर पाते क्योंकि वेद तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ब्रह्म योग्यता प्राप्त की हो। यह प्रतिबंध किसी जाति भेद पर आधारित न होकर योग्यता पात्रता पर निर्भर है। बिना ब्रह्म योग्यता प्राप्त किए वैदिक साहित्य समझा नहीं जा सकता। अतो यह बड़े ही दुख की बात है कि ऐसा व्यक्ति जिनमें ब्रह्म योग्यता नहीं हो और जो प्रामाणिक गुरु द्वारा प्रशिक्षित नहीं हुए होते हैं, श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराणों जैसा वैदिक साहित्य की टीका करते हैं। ऐसा लोग कभी भी इन ग्रंथों की वास्तविक संदेश को प्रदान नहीं कर सकते। ऋषि प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण माने जाते थे, इसलिए उन्हें ब्रह्म वर्चस्वी अर्थात ब्राह्मण कौशल में पूर्ण दक्ष कहा गया है। हल्ला कर रहा है बार में। तो सुबह का श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेषकर बाहर से जो आए हुए हैं, तो हम सुनते आ रहे हैं पिछले दो श्लोक में सार गर्भित भक्तिमय व्याख्या सुना है जो प्रभु के द्वारा बहुत सुंदर व्याख्या थे। मुझे लग रहा है मेरा कोई योग्यता नहीं है, मेरा अंदर उतना शक्ति भी नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ विशाल आकाश में छोटा सा चिड़िया जितना उड़ सके। तो आज इस चौथे स्कंध जो कि विसर्ग का वर्णन है, ब्रह्मा जी का सृष्टि का वर्णन है। यहाँ पर ब्रह्मा का जो मानस पुत्र मनु और शत्रुपा से जो तीन कन्या आकृति, देवहूति और प्रसूति, उनका जो वंश विस्तार है उसका वर्णन इस अध्याय में है। मनु की पुत्रियों की वंशावली। तो देखिए, ये भागवतम में 10 विषय की वर्णन है। तो अत्र सर्ग विसर्ग से मुक्ति तक जो 9 सब्जेक्ट है, ये आश्रय में आश्रित है। तो दो तत्व माना अगर विचार किया जाए तो दो तत्व, आश्रय तत्व और आश्रित तत्व है। तो बाकी ये से सारे तत्व है, 9 तत्व, दशम स्कंद तक 9 स्कंद में वर्णन किया गया है। ये आश्रित तत्व है जो आश्रय में आश्रित है, और आश्रय कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। आश्रय जानते कही ये नव पदार्थ, ये नवेर उत्पत्ति हेतु से ही आश्रय तत्व। उस आश्रय तत्व को जानने के लिए ये 9 तत्व का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी किया है। अत्र सर्ग विसर्गो से शुरू करके मुक्ति तक, निरोध मुक्ति आदि। और कृष्ण सर्व आश्रय है, सबका आश्रय दाता है, आश्रय तत्व है मेन। तो उस श्री कृष्ण का शरण में जाना जीव का परम धर्म है। यह पर भगवान श्री कृष्ण का शरण में संपूर्ण शरणागत एक भक्त जो प्रजापति ऋषि, उनका सद्गुणावली और का बारे में इस श्लोक में बताया। प्रजापति स भगवान ऋषिस्तस्याम अधिजनात। यह देखिए, हमने सुना है पिछले 2 श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन आ गए कि प्रजापति ऋषि को कन्या संप्रदान करने का पहली टर्म एंड कंडीशन एग्रीमेंट किया था कि मनु ने कि तुम्हारा जो पुत्र होगा, पुत्री का धर्म अपनाने के लिए वो पुत्र मुझे समर्पण करना। क्योंकि मनु जानते थे कि इनका जो पुत्र है, पुत्र के रूप में भगवान यज्ञ विष्णु स्वयं अवतार लेने वाला है। तो एक तो पुत्र और एक तो दैत्र ग्रैंडसन, तो दोनों का आनंद का लाभ उठाने के लिए, लालन पालन का और उनका प्यार करने का, जो भगवान के साथ उस संपर्क का लाभ उठाने के लिए मनु ने ये शर्त रखा। किंबा विष्णु चक्रवर्ती पाद का टीका का अनुसार कि प्रजापति दक्ष का 2 संतान होते हुए भी ये धर्म को उन्होंने अपनाया। लेकिन एक सीनियर भक्त से मैं पूछा तो बताया कि मनु का उस टाइम 2 संतान नहीं हुआ, तब जब ये धर्म को अपनाया 2 संतान उसका बाद में हुआ, जो पुत्र संतान 2 बाद में आया। तो आकुति था पहली कन्या, तो पहली कन्या का शादी में ही ये, क्योंकि कोई पुत्र नहीं था तो पुत्र को प्राप्त करने के लिए ये पुत्री का धर्म को अपनाया मनु ने। ये मनु और शत्रुप का जन्म ब्रह्मवर्तों में बिठूर में हुआ, जो बिठूर गंगा का किनार में है। और वहां पर आगे जाके जो उत्तन पाद का जो किरम ने एस्टैब्लिश किया है वह पास में ही है, जहां पर ध्रुव महाराज का जन्म हुआ है। ध्रुव महाराज वहीं से पैदल चल के वृंदावन तक आए थे। और वो बिठूर है जो कानपुर में अवस्थित है, गंगा के किनारे में, जहां पर सीता देवी को भी वनवास दिया गया था और लव कुश का भी जन्म वहीं पर हुआ था। तो बिठूर में अभी इस्कन का एक बहुत बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा है, अगले साल ओपनिंग है, आप सबका उसमें इनविटेशन। हाँ, मैनामती मार्ग पर। তো মনু শতরূপা কাজ মানব সৃষ্টি কাজ কেন্দ্রবিন্দু হয় সেন্টার পয়েন্ট হয় ও বিঠুর হয় তো মনু শতরূপা মানব সৃষ্টি কা মান লিজে ওই সে শুরুবাত হয় বিঠুর তো কাফি সারা তীর্থ স্থান ভি হয় আপ লোক আ সকতে কবি ভি টাইম মিলে তো পাস মে হ্যাঁ জ্যাদা দূর নই হ্যাঁ মুঝে তো হর মহিনা মে 15 দিন কে লিয়ে জানা পড়তা হ্যাঁ তো দেখিয়ে ইহা পর প্রজাপতি সে ভগবান প্রজাপতি পহলে তো দেখিয়ে মনু কিউ ইস প্রকার বিলক্ষণ আচরণ কিউ কিয়া উনকা তিন তিন রাজপুত্রী রাজপুত্রী কা শাদি শাদি বিবাহ রাজকুমার সে হোনা চাই লেকিন এইসা না করকে উনহনে ক্যা কিয়া জঙ্গল মে ডাক যাকর ব্রহ্ম বর্ষসী ইস প্রকার ব্রহ্ম বর্ষসী যো পরমেন সমাধিনা হ্যাঁ দেখিয়ে পরমেন সমাধিনা ব্রহ্ম বর্ষসী এ সারে শব্দ ঋষি কে লিয়ে এ ঋষি কা যো গুণাবলী হয় ব্রাহ্মণত্ব কা যো গুণাবলী হয় ও এ শব্দ মে প্রকাশ ডালতা হয় ঋষি ভগবান কা পরম ভক্ত যো সমাধিনা অষ্টাঙ্গ যোগ কা যো সর্বস্ব যোগ কা যো শ্রী হয় সমাধি উস স্তর মে ও অবস্থিত থে আর ও হয় ভক্তি যোগ তো মনুনে কিউ ইস প্রকার এক ভক্ত ব্রহ্মবর্ষসী কো আপনায়া আপনার জামাত কে রূপ মে তিন তিন কন্যা কো ইস প্রকার হি দিয়া উদ্দেশ্য ক্যা থা আচ্ছা প্রজা সৃষ্টি করনে কে লিয়ে আচ্ছা প্রজা কো প্রজা সৃষ্টি লক্ষণম থা উনকা ইয়ে লক্ষ্য থা এই বৈশিষ্ট্য থা লক্ষ্য থা যে আচ্ছা প্রজা কো সৃষ্টি করে কি মনু মানব জাতি কা প্রধান হয় আর সমাজ মে আচ্ছা সমাজ সৃষ্টি হো আচ্ছা আদমি কো সৃজন হো না কি বর্ণ সংকর আদি সৃজন হো আর সমাজ মে সমাজ কো নরক বানা দে আজকাল তো এই হো রায় প্রজাপতি শব্দ আতা যে প্রজা কো পালন করনে বালা যে আচ্ছা প্রজা কো আচ্ছা সে দেখভাল করতে জেসে রাজা হো কোই পিতা হো জিসকা সন্তান উসকা প্রজা হয় আজকাল তো প্রজাপতি তো কোই নেই হ্যায় আজকাল তো প্রজা হন্তি হ্যায় সারে সারে প্রজা হন্তি হ্যায় ইভেন যে মা হ্যায় আপনা কোখ মে আপনা পুত্র কো ওই পর হত্যা কর দেতে কোই কোই দেশ মে তো কম্পলসারি কর দিয়া যে আপনা এক বাচ্চা কে বাদ সেকেন্ড বাচ্চা কো অবর্ষণ করনা হ্যায় কম্পলসারি ইস ফ্যামিলি প্ল্যানিং উনকা সব লোক হত্যারে হ্যায় আজকাল কলিযুগ মে লেকিন স্পিরিচুয়াল ফ্যামিলি প্ল্যানিং মে এইসা নেই নেই হ্যায় স্পিরিচুয়াল ফ্যামিলি প্ল্যানিং জো হ্যায় উসমে ইস প্রকার ব্রহ্ম বর্ষসী পুরুষ আতে থে শিল প্রভাত জি তাৎপর্য বাতাতে যো ব্রাহ্মত্ব ব্রাহ্মণত্ব কা গুণাবলী সম্পূর্ণ হ্যায় কি স্পেশাল ফ্যামিলি প্ল্যানিং মে পহলি জন্ম হ্যায় গর্ভধান সংস্কার ও পহলি জন্ম বতাতে দুসরা জন্ম হ্যায় যো আধ্যাত্মিক দীক্ষা কে দ্বারা আর ইসসে ক্যা হতা হ্যায় আচ্ছা সন্তান আতে ইস কলিযুগ মে বিশেষ করকে বহুত সারে যো দিব্য আত্মা হ্যায় ও এ সংসার মে আনে কে লিয়ে ও আচ্ছা পাত্র ঢুঁঢতে লেকিন সারে পাত্র গন্ধ হ্যায় ইসলিয়ে ও অবতরিত হো নেই পাতে তো গর্ভধার সংস্কার আদি বহুত জরুরি হ্যায় তো ইসে ক্যা হ্যায় আচ্ছা পুত্র পায়দা হোগা আর সমাজ মে মানে আচ্ছাই ফেলেগা তো মনু ইস প্রকার আচ্ছা সন্তান উৎপন্ন করনে কে লিয়ে ইস প্রকার জামাত কো ঢুমা ইয়া কোশ্চেন ইয়ে আ সকতা হ্যায় যে রাজপুত্রী হোনে কে নাতে ভি উস আকুতি কা কত অপবাদ দে সকতে কই ক্যা সুন্দর সাউন হ্যায় मेरा मन तो भाग गया अभी उसमें। आकुति राजपुत्री है और इस प्रकार जंगल में जाकर एक साधु को शादी करने के बाद उनका अंदर तो वो तो भोग विलास में लालन पालन पोषण हुआ है, तो वो किस प्रकार योग्यता प्राप्त किया है जो भगवान योग्य को धारण करने का योग्यता उसके अंदर कैसे आया है, तो बताते हैं प्रेम सेवा के द्वारा। अपना पति को इस प्रकार प्रेम से सेवा किया, जैसे हम कपिल देवहूति का उसमें हमने सुना है किस प्रकार देवहूति अपना अपना पति कर्दम मुनि को किस प्रकार सेवा किया, किस प्रकार साधना किया, और पति सेवा के द्वारा उन्हें भगवान जैसे एक पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर भी ऐसा ही है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं अगर संसार में स्त्री को हमेशा संतुष्ट रहने का शिक्षा लेना चाहिए, हर परिस्थिति में स्त्री को संतुष्ट रहना चाहिए, और स्वामी का भी कर्तव्य है स्त्री को संतुष्ट रखना, तो अगर दोनों संतुष्ट रहे तो अच्छा संतान आ सकते, अगर असंतुष्ट है तो कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा वहां से। तो कहीं भी परिस्थिति में संतुष्ट रहने का शिक्षा दिया जाता है वैदिक शास्त्र में, और ये अच्छा फैमिली है संसार, अच्छा संसार है। तो यह देखिए जो ऋषि का जो क्वालिटी है ब्रह्म वर्षसी जो कि बताते वेद अध्ययन आदि ना अतिवो तेजस्वी, वेद अध्ययन और अन्य जो साधन भजन है उसके द्वारा जो अतिवो तेजस्वी वो ब्रह्म वर्षसी है। जब कोई निर्भक्त में जैन करते हैं तो कठोर नियम कानून का साथ हमारा जो चार सब्जेक्ट मैटर है गीता ईशोपनिषद उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर कोष पढ़ाया जाता है, तो अध्ययन आवश्यक है। तो अध्ययन के द्वारा आध्यात्मिक तत्व के बारे में जानकारी और साथ साथ सेवा तपस्या आदि जम नियम इत्यादि जो है, जैसा कि सुबह 4 बजे मंगल आरती में आना ही है, 4:10 में समाधि आरती में आना ही है, तो अर्ली मॉर्निंग में उठ के नहाना है ठंडी पानी ठंडी में गर्मी में कैसे भी वो उठना ही है, तो ये सारे जो साधना है ये साधना के द्वारा यहाँ पर ऋषि ब्रह्म वर्षसी पद को प्राप्त किया। अतिव तेजस्वी, इतना सारे गुणावली प्राप्त किया जो वो तेज निकलते थे, और उन्होंने इतना संसार को इतना असार समझा था जो संसार असार है, शादी करने का उनका कोई विचार नहीं था, बाद में सब लोग उनको पकड़ा जो शादी करना चाहिए, तो बाद में वो राजी हुआ क्योंकि भगवान आने वाला है, तो बृहद स्वार्थ के लिए क्षुद्र स्वार्थ को त्याग दिया उन्होंने। समाधिना ईश्वर ध्यान मतलब ईश्वर की ध्यान, ईश्वर में ध्यान लगाना, और ध्यान किसके द्वारा लगता है मन के द्वारा, और ये कब जाके लग सकता है ध्यान, ये सारे जम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि करके ध्यान धारणा उसके बाद समाधि। जैसे कि हमने मंदिर में दर्शन करने गया, भगवान को दर्शन किया, फिर बाहर आया भूल गया, कुछ भी याद नहीं है और क्या दर्शन किया। समाधि ऐसा नहीं, समाधि कंटिन्यूअसली भगवान को ध्यान करना, हमेशा भगवान, कभी भगवान से विस्मृत नहीं होना, भगवान को हमेशा ध्यान करना। और ये जब तब संभव होता है जब प्रेम हो, जब प्रेम हो तब संभव होता है। प्रेमांजन सुरित भक्ति विलोचनेन शांत सदैव हृदयसी विलोकयन्ति, जब श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। वो समाधि स्तर तब प्राप्ति का प्राप्त हो सकता है जब प्रेम हो, प्रेम का अंजन हो आंखों में, तब हृदय में अंदर से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। हृदयम विलोकयन्ति, हृदय से भगवान का दर्शन हो सकता है। और यही है इंटरनल डेवलपमेंट, अंदर की उन्नति है, आध्यात्मिक उन्नति अंदर अंदर की, ना कि बाहर की उन्नति। बाहर की उन्नति तो बहुत कुछ हम देखते हैं, विशेष करके आजकल का जो ब्यूटी है एक्सटर्नल ब्यूटी है, इंटरनल ब्यूटी कुछ नहीं है। दिल्ली आगरा बॉम्बे सब जाइए, बड़ा पॉलिशिंग किया हुआ, बाहर से बड़ा ब्यूटीफुल है, लेकिन इंटरनली कोई ब्यूटी नहीं है, गंदगी है, करेक्टरलेस है। तो यहां पर ये ऋषि बहुत चरित्रवान थे, अंदर में उनका सौंदर्यता था, भगवान में हमेशा भगवान का चिंतन में, भगवान का सेवा में वो निजुक्त थे। बहु जन्म विपक्केनो सम्यक योग समाधिना, अरे सम्यक योग समाधि ये सर्वोच्च स्तर है जो भक्ति योग है। यह है कृष्ण भावनामित में पूर्ण रूप में एब्जॉर्प्शन हो जाना, सेम गलती में भी किया कल की बात है, सॉरी। श्रीमद् भागवत गीता में भी बताते बहु नाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। तो जो योग की परिपक्वता वह है भक्ति योग। अरे भक्ति योग में आने के लिए कई जन्म लग जाता है, कई जन्म लग जाता है। और यह बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में जैसा कि भागवत गीता में उल्लेख है, ब्रह्म गुण इस प्रकार है, इंद्रियों का संयम, संयम मन का संयम, अंत तथा बाह्य स्वच्छता, अंत तथा बाह्य स्वच्छता, आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान की उन्नति, सादगी सत्यता, श्रीमद् भाग श्री भगवान में श्रद्धा इत्यादि। तो ये सारे सद्गुणावली प्राप्त करना है। तो ये सारे सद्गुणावली देख के ही जमाता को धुना है मनु महाराज ने। आजकल तो ऐसा नहीं देखते, नौकरी है, बैंक बैलेंस है, रेगुलर इनकम है, बस दे दो अपना कन्या संप्रदान कर दो, और उसमें क्या आगे जे क्या जनरेशन निकलेगा उसके लिए भी ध्यान नहीं है। और वो दारू पीता हो, कुछ भी करते हो करेक्टर, उसका कोई परवाह नहीं है। तो ये सद्गुणावली देखिए, यहाँ पर कितना सद्गुणावली इनके अंदर थे, जो सर्वोच्च योग पद्धति में वो आरूढ़ थे। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं जे समाधि, समाधि ना जो ध्यान करना, अपना मनमानी भी नहीं ध्यान करना चाहिए। ध्यान भगवान के भक्तों का गाइडेंस में होना चाहिए। जब अर्जुन थॉटफुल थे, चिंतनशील व्यक्ति थे कि ऐसा अगर युद्ध करें हम तो इस प्रकार युद्ध करें तो हम इस प्रकार रिजल्ट आएगा, वर्ण शंकर आएगा, तो बहुत ही अच्छा अच्छा शब्द बोल रहे थे, तो बहुत अच्छा चिंतनशील शब्द था। लेकिन भगवान ने बोला तुम्हें सद्गुरु का शरण में जाकर इसको विचार करना चाहिए, सदगुरु का अंदर में काम करना चाहिए। तो बाद में वो गुरु के रूप में स्वीकार किया कृष्ण को, तब जाके वो, तो हमारा चिंतन, हम अच्छा चिंतन कर सकते, उसका भी विचार, उसका वो ठीक है कि नहीं है, वो भी सदगुरु का साथ परामर्श करना चाहिए, तब जाके वो हम समाधि में परिपक्व हो सकते। अरे भक्ति योग है, जो भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग ध्यान, भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन, भक्ति योग एक संपद है। और ये संपद को प्राप्त करने के लिए हमें स्मरण क्रंदन करना चाहिए, हमेशा भगवान के स्मरण। और बताते हैं कृष्ण नाम का स्मरण करते हुए हमें क्रंदन करना चाहिए, ये भक्ति योग है। श्रील प्रभुपाद जी एक बार बॉम्बे में, उन्होंने लेक्चर देने के बाद अपने ऑफिस में पहुंचा, और ऑफिस में जब पहुंचा तो कई सारे वह कई आदमी थे, लेक्चर दिया। प्रभुपाद जी बताया कि हमें 24 आवर्स भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान के स्मरण करना चाहिए। और प्रभुपाद जी लेक्चर के बाद बॉम्बे ऑफिस में आए, ऑफिस में बैठा, एक व्यक्ति प्रभुपाद जी को फॉलो किया, फॉलो करके प्रभुपाद जी के पास आए, और प्रभुपाद जी ऑफिस में बैठ के तुरंत फोन लगाया, इतना पैसा यहाँ से ट्रांसफर वहाँ करो, वहाँ से वहाँ ट्रांसफर करो, रथ यात्रा के लिए कितना सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कितना मनी ट्रांजेक्शन का बात कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति हैरान हो गया, ये प्रभुपाद जी अभी अभी लेक्चर में बताया हमें हमेशा भगवान का ध्यान करना चाहिए 24 आवर्स, अरे जैसा बताया वैसा तो नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने उधर खड़ा है प्रभुपाद जी, उनका चेहरा देख के समझ गया इसका अंदर में क्या चल रहा है। तो प्रभुपाद जी उनको तुरंत बुलाया जो आप मेरा पीछे आ जाओ, और पीछे उन्होंने प्रभुपाद जी बताया यहाँ अपना कान को रखो। तो कान रखा पीछे, और प्रभुपाद जी वैसे ही फोन में बात कर रहे हैं, और पीछे से वो व्यक्ति क्या सुन रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है आंतरिक डेवलपमेंट, आंतरिक डेवलपमेंट है। प्रभुपाद जी उस स्तर के थे, हमेशा भगवान का चिंतन में लगे रहते थे, इसलिए बताते वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। एक एडवांस स्तर का भक्त उनका जो आचरण भारतीय आचरण से कई महित हो सकते, कैसे आचरण किया, जैसा कि अवधूत नित्यानंद प्रभु का आचरण भाज्य का आचरण से महित हो सकते, और महित कर देते हैं कई कई भक्तों, क्योंकि वो अवॉइड करना चाहते हैं जो संसार का इस प्रकार बात। कई सारे भक्त आदमी हैं जो आके अननेसेसरी डिस्टर्ब करते, तो उनको महित करके उसको उनको दूर भगाना चाहते थे, चाहते कई सारे महात्मा हैं। जैसे कि भगवान स्वयं अपना भक्त शिव जी को आदेश दिया जे जाओ संसार में जाकर तुम ऐसा एक फिलोसफी क्रिएट करो जो कि वो सारे आदमी मुझसे दूर चला जाए, जो मेरे पास आते हैं सिर्फ कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, भोग विलास चाहते हैं, वो सारे आदमी को मुझसे दूर भगाओ, तुम शंकराचार्य के रूप में अवतर लो और माया द्वारा मोहित करके उनको हमसे दूर भगाओ। भगवान शिव ने बोला प्रभु और किसी को दीजिए ये सेवा, मुझे आपका एगेंस्ट में प्रचार करना पड़े ये मैं नहीं चाहता हूँ। तो भगवान शिव परम भक्त हैं, और भगवान ने बोला नहीं, यू आर फिट फॉर दिस, आप जाओ, आप ही कर सकते हो ये काम। तो भगवान शिव फिर बाध्यतामूलक आए और उस प्रकार तुम भी भगवान हम भी भगवान सब कुछ माया, इस प्रकार एक फिलोसफी क्रिएट करे करके उस प्रकार व्यक्ति को भगवान का भगवान को जो डिस्टर्ब कर रहे थे उनको दूर लेके गया। तो कभी कभी क्रिया मुद्रा बहुत समझने का बहुत कठिन है, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस भक्ति योग में हमें अंदर का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। और इस कलि युग में तो विशेष करके कलि में टू रिमेन ब्रह्मचारी इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक महाराज बताते हैं इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, असंभव का नजदीक है ये रहना। फिर भी अगर गुरु का संरक्षण में साधन भजन करे तो बताते हैं कि 90% प्रॉब्लम 90% प्रॉब्लम उसका ऑटोमेटिक सॉल्व है, 10% प्रॉब्लम रहेगा मेंटली। और शिला प्रभुपाद जी का तात्पर्य में देखिए, शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि कलिजुग में प्रभुपाद जी दुख करके बताते हैं तात्पर्य में कि उस प्रकार व्यक्ति जिसका कोई योग्यता नहीं है ना, वो ब्रह्म बंधु भी नहीं है, इवन ब्रह्म बंधु भी नहीं है वो, और उस प्रकार व्यक्ति श्रीमद् भागवत का जो प्रामाणिक गुरु से प्रशिक्षित भी नहीं हुए हैं वो उसके ऊपर भागवतों के ऊपर टीका लिखते हैं, उसके ऊपर प्रवचन करते हैं जिसका कोई योग्यता नहीं है। फिर श्रीमद् भागवतम में हम देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, जैसा यह प्रभुपाद जी शास्त्रों का आधार पर कोटेशन करके बताते हैं, स्त्री शूद्र तथा बंधु ये तीनों वर्ग अल्पज्ञ कहलाते हैं, वो ये वेदों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वेद तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ब्रह्म योग्यता प्राप्त की है। यह प्रतिबंध किसी जाति भेद पर आधारित न होकर योग्यता पर निर्भर है। बिना ब्रह्म योग्यता प्राप्त किए वैदिक साहित्य समझा नहीं जा सकता। तो ये जो कठोरता है ये है उस लोगों के लिए, लेकिन अगर कोई भगवान का शुद्ध भक्तों का शरण में आ जाते हैं तो तुरंत ही उसका जो अयोग्यता है वो योग्यता में परिवर्तन हो जाता है, वो तुरंत योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। बोनाफाइड गुरु का शरण लेते ही वो योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री वश्य तथा शूद्र त्यपि जानती प्राम गतिम, वो सब परागति को प्राप्त कर सकते हैं। इवन बताते हैं किरा तो हुनांद्र पुलिंद पुलकोसा, ये सारे जो आदमी विभिन्न देश में जन्म लिया, किरात अफ्रीकान, उसके बाद आपका जर्मन, रशियन, साइबेरियन इत्यादि जो लो कास्ट पीपुल है, आंध्र प्रदेश के कोई लो कास्ट पीपुल, तो बताते जे अन्य च पाप पापा, जो अन्य च पापा, जो पाप कार्य में नियत रत है, जो हमेशा पाप कार्य करते रहते हैं, जद अपाश्रय आश्रय, अगर वो भगवान का भक्त का चरण में आश्रय लेते हैं, शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णुवे नमः, वो भी तुरंत शुद्ध हो जाते हैं, वो भी तुरंत शुद्ध हो जाते हैं, और ये सारे वैदिक शास्त्रों में उसका अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो भगवान का भक्त का शरण ग्रहण करना बहुत आवश्यक है आध्यात्मिक जीवन में। भगवान का भक्त का शरण ग्रहण किए बिना कोई भगवान को नहीं समझ सकते। जे अन्य अविंदाक्ष, सॉरी वो श्लोक है कि अथापि ते पजाम भुजोदय जानाति तत्तम भगवान महिम्न प्रसाद लेश अनुग्रह, प्रसाद लेश अनुग्रह ही। जब तक हम भगवान का भक्त का कृपा प्राप्त नहीं कर पाते तब तक हम भगवान का जो महिमा है वो हम प्राप्त नहीं कर पाते। यहाँ पर भगवान शब्द आया है, भगवान का जो आराधना रुचि किया है वो भगवान हरि जो सर्वैश्वर्य पूर्ण है, अनअल्प ज्ञान जो भगवान विशाल ज्ञान का अधिकारी है, उस भगवान को जानने के लिए हमें भगवान का भक्तों का शरण में जाना है। यदि गौड़ना हो तो केमोने हो तो केमोने धरितम देह बताते, अगर भगवान स्वयं भक्त के रूप में नहीं आते और चैतन्य महाप्रभु का पार्षद लोग अगर नहीं होते तो भगवान का जो महिमा ये समझना बड़ा कठिन होता। तो स्वयं भगवान इवन मायावादी आदि कई सारे अपसंप्रदाय व्यक्ति जब तक वो रूपानुग संप्रदाय का कोई व्यक्ति का संस्पर्श में नहीं आते तब तक उसका उद्धार का कोई उपाय नहीं है। तब तक भगवान का महिमा को भगवान को नहीं समझ पाते। इसे भगवान का भक्त का शरण ग्रहण करना बहुत आवश्यक है और यही है जीव का स्वरूपतो स्वरूप है। जीव का यही स्वरूप है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। लेकिन भगवान बताते हैं अगर कोई बोले मैं भगवान का दास हूं तो भगवान बताते हैं वो मेरा दास नहीं है, वो मेरा भक्त नहीं है। कोई भगवान का भक्त बोल के जाहिर करे, कहीं नहीं भक्त शुरू किया जप करते हैं मंगल आरती में आते हैं बस है मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान बताते वो मेरा भक्त नहीं है। भगवान बताते हैं जो मेरा भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है और वही है गोपी भक्त पद कमलो दास हो दासानु दास, वही है जीव का असली पोजिशन है, सर्वोत्तम पोजिशन है भगवान का सेवक का सेवक। भगवान का सेवक का जो पोजिशन है वो सब रिजर्व है, इसलिए बेहतर है भगवान का सेवक बने और इससे भगवान खुश होते, यही परंपरा है, इसी से भगवान खुश हो जाते हैं। जैसा कि कोई बच्चा को खुश कर दिया, चॉकलेट लजेंस दे दिया तो वो पिताजी खुश हो जाते हैं, उसका रिलेटिव खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर भगवान का भक्त को सेवा किया, प्रसन्नता प्रसन्न किया तो भगवान खुश हो जाते हैं। इसलिए बताते हैं संसार सर्प दष्टानाम मूर्छित नाम कलौ जुगे औषधम भगवान नाम हो श्री वैष्णव श्रीमद वैष्णव सेवनम। इस संसार सर्पों के द्वारा दंशता नाम उसको कटा गया, सर्प काटा गया तो सर्प काटने के बाद वो मूर्छा हो गया और चेतन हो गया, तो उसके लिए महा औषध क्या है? उसका महा औषध है भगवान के नाम और भक्तों की सेवा। औषधम भगवान नामो श्रीमद वैष्णव सेवनम, भगवान के नाम और भक्तों की सेवा ये उनके लिए औषध है। जो संसार रूप सर्पों के द्वारा जो दंशित होने के बाद जो मूर्छित हो गया, मतलब जिसको और बाह्य चेतना नहीं है सिर्फ संसार में ही चेतना है, रोज हमें इतना रुपया कमाना है परिवार को पालन पोषण करना है बस इसका आगे और सोच सकते थे जो उसी में उलझा हुआ है, उस व्यक्ति के लिए ये महा औषध है भगवान नाम जप करें और भगवान का भक्तों का शरण ग्रहण करें। और बताते विषयम विषय आविष्ट मूर्ख नाम चित्त संस्कार औषधम, उस विषय आविष्ट जो मूर्ख है उसके लिए जो चित्त संस्कार का जो महा औषध है वो क्या है? विश्रम्बेन गुरु सेवा और वैष्णव उत्सिष्ट भोजनम, उसके लिए गुरु की सेवा करना सावधानी पूर्वक और उनकी जो महाबल है उत्सिष्ट आदि भोजन, उनसे श्रवण करना, उनको उत्सिष्ट भोजन करना, चलन सेवा करना, चलन धौत जल, ये गुरु ये महा औषध है उस संसार बद्ध जीव के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु का शरण ग्रहण करें, भगवान का भक्त का शरण ग्रहण करें और भगवान नाम आश्रय ग्रहण करें, और इस प्रकार हम इस संसार बंधन से मुक्त हो सकते हैं। एक्चुअली मुझे क्षमा करना, बहुत हमने प्रयास किया, कुछ भूल त्रुटि हो, और मेरा हिंदी भी तो अच्छा नहीं है, और मेरा उतना मैं सोच रहा था क्या बताऊँ इस श्लोक में, तो थोड़ा बहुत प्रयास किया बोलने के लिए। तो किसी का कुछ मतलब कमेंट है इसके ऊपर, कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ हाँ, ये पुत्र है यज्ञ, भगवान यज्ञ, और जो पुत्री है वो है लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी स्वयं लक्ष्मी पुत्री के रूप में आए। और यहाँ पर देखिए मिथुनाम शब्द का अर्थ है जो स्वामी स्त्री का जो मिलन। तो यह पुत्रार्थ क्रियाते भाज्या, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। यह सिर्फ इंद्र सुख के लिए स्त्री को ग्रहण नहीं करना चाहिए, पुत्रार्थ क्रियाते भाज्या, अच्छा संतान अच्छा प्रजा को सृजन करने के लिए होना चाहिए। और यह जो रुचि है ब्रह्म वर्चसी रुचि, रुचि भगवान को प्राप्त किया आकुति से मिथुनी धर्म अवलंबन करके। कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट्स है? और ये गैप का कैलकुलेशन मुझे मालूम नहीं है, गोविंद भक्त प्रभु आप बताएंगे। देवहूति उनके भी पुत्र के रूप में भगवान कपिल देव आए, यहाँ पर भी यज्ञ के रूप में भगवान आए, तो गैप कितना था, डिस्टेंस मतलब समय का डिफरेंस कितना था? दोनों तो मनमंत्र में वो लोग तो कई लाखों वर्षों तक जीते थे, तो लाखों वर्षों का कब आए? हाँ लेकिन देवहूती का जो ना करने का शादी एक ही दिन में हुआ था, ओके। हरे कृष्णा गंतरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।